الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بوقت مختصر مجلس كان منك بهوري ألا تلا قبول فرماه. عارف بالله حياتي أقدس سيد معنا شاحك يا محمد أقدس صاحب رحمة الله عليك، ملفوظات سنائے جاتے ہیں اللہ والے عموماً مثالیں دے کر بہت سی حقیقتیں سمجھا دیتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ دل پر واقعی اثر کرتی ہے. ایک عنوان ہے افناء نفس، یعنی اپنے نفس کو مٹانا، اپنے نفس کو فنا کرنا. یہ زیادت ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اپنے آپ کو مٹانا اور نفس کو ختم کرنا. نفس کو ختم کرنا، فرمایا کہ جو لوگ ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی پیش کر رہے ہیں ان کا ایمان کتنا ہوتا ہے، اس کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں. گر مرا صد بار تو گردن زنی، ہم چو شمعے بر فروزم روشنی. گر مرا صد بار تو گردن زنی، ہم چو شمعے بر فروزم روشنی. فارسی شعر ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چراغ کی بتی پر جب گل آ جاتا ہے، دیکھا ہوگا انڈیا وغیرہ کے اندر کے بعد ملتا ہے چراغ جلتا ہے، جس کو دیا کہتے ہیں، تو نیچے بوتل ہوتی ہے، اس میں کیروسین وغیرہ تیل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بتی ہوتی ہے، کپڑے کی بتی ہوتی ہے بنی ہوئی، وہ جلتی ہے. وہ تھوڑی دیر جلنے کے بعد اوپر کالا ہونا بھی شروع ہوتا ہے. جب کالا ہوتا ہے زیادہ تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ روشن ہو جاتی ہے. گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد پھر وہ اوپر کچھ کالا پن آ جاتا ہے، تو اس کو کہا گل. تو جب وہ کاٹ دیا تو پھر اس کے بعد روشنی تیز ہو جاتی ہے. جب کالش اس کے اوپر ہوتی ہے تب روشنی تھوڑی کم ہو جاتی، اور جب وہ کاٹ دیتے ہیں تو روشنی پھر بڑھ جاتی ہے، اور اس طریقے پر وہ روشنی چلتی رہتی ہے. بتی ہوتی ہے تقریباً اتنی یا اتنی، دھیمے دھیمے کاٹتے رہتے ہیں، چار چھ مہینے چلنے بعد دوسری بدلنی پڑتی ہے، دوسری بدل لیتے ہیں. اب یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، جو بیچارے یہاں کے پیدا ہوئے اور کبھی نہ گئے ہوں ان کو تو سمجھانا ناممکن ہے. اس لیے کہتے ہیں کم سے کم بچوں کو دو چار مرتبہ ہندوستان یا پاکستان، ضرور لے جائیں، وہاں کے ایسے دیہات میں بھی سیر کرائیں گے جہاں لائٹ بتی کچھ نہ ہو. تو دیہاتی زندگی ہی سے آدمی سب کچھ حقیقتیں معلوم کرتا ہے، حقیقتوں تک پہنچتا ہے. اسی کی مثال دے رہے ہیں، اس زمانے میں تو یہی مثالیں چلتی تھیں، اب بڑی عمدہ مثالیں. تو چراغ کی بتی پر جب گل آ جاتا ہے تو اس کو قینچی سے کاٹ دیتے ہیں، جس سے روشنی اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی بری بری خواہشات کو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی قینچی سے کاٹتے رہو گے تو تمہارے ایمان کی روشنی روزانہ بڑھتی رہے گی. کیا عجیب بات فرمائے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کی قینچی، یعنی اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ پھر آدمی کو گناہ کرنے ہی کی نہ سوجھے. اللہ اتنے بڑے محبوب ہیں میرے، پھر گناہ کروں، یعنی ایسا کام کروں، ایسا عمل کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ آدمی دنیا کے ادنا محبوب کی خاطر اس کے سامنے وہ کام نہیں کرتا جو اس کو ناپسند ہو، کہ بھائی ناراض ہو جائے گا، محبوب ناراض ہو جائے گا. حالانکہ وہ ادنا محبت ہوتی ہے، معمولی محبت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ کام نہیں کرتا. چھپ کر کرے الگ بات ہے، اس کے سامنے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو محبوب ہے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے گی کہ پھر انسان کو گناہ کرنا ایسا لگے گا جیسے وہ چراغ میں ऊपर कालापन आ गया, जिसे रोशनी मध्यम हो गई, रोशनी कमज़ोर हो गई, अब उसको जो है मिटाकर फिर अपनी रोशनी बढ़ाएगा। तो फरमाया कि नज़र की हिफाजत करके नफ्स की हराम ख्वाहिश की गर्दन पर अल्लाह की मोहब्बत की तलवार चलाकर देखो तो ईमान कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तेरे हुक्म की तेग से मैं हूँ बसमल, शहादत नहीं मेरी ममनून खंजर, यानी मुझे शहादत होने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत से अगर मैं अपने गुनाहों को कम करूँ, गुनाहों को ख़त्म करूँ, यही सबसे बड़ी शहादत है। ए खुदा, आपकी शरीयत के हुक्म की तलवार से मैं अपने आप को ज़ख्मी कर रहा हूँ, मेरी शहादत काफिरों की तलवार के ममनून नहीं है, आपके हुक्म की तलवार के ममनून है। बहर आगे एक मज़मून भी है, उसके बाद फरमाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन गुनाह से बचने का हुक्म नहीं मानते। औलियाउल्लाह वो हैं जो किसी वक्त अल्लाह को नाराज़ नहीं करते। अल्लाह हमें ऐसे ही अल्लाह वाला बना दे कि अल्लाह की मोहब्बत इतनी गालिब आ जाए कि हमसे गुनाह छूट जाए, और गुनाह को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत का गलबा जब होता है तो फिर इंसान खुद ब खुद छोड़ देता है कि अरे ये कोई चीज़ है। जब इंसान के पास बड़ी दौलत हो, लाखों पाउंड की दौलत हो, तो किसी के एक दो रुपये पर नज़र नहीं करता है, कहीं एक दो पाउंड किसी के जेब में पड़ रहा है उसकी भी चोरी कर लो, कोई करता है? भाई अल्लाह ने खुद मुझे बहुत दिया है, हज़ारों पाउंड का मालिक हो, लाखों पाउंड का मालिक हो, हाँ जो बेचारा गरीब हो फिर इस तरह की हरकत कर लेता है, लेकिन बड़ा आदमी फिर ये नहीं करता। हजरत रहमतुल्लाह एक मिसाल देते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ा वज़ीर हो या बहुत बड़े अहदे का मालिक हो, वो किसी ठेले पर यानी जो लारियाँ चलती ना उस पर कोई आलू नहीं चोरी करता। इतना बड़ा आदमी आलू चोरी कर जाएगा? आलू की हैसियत ही क्या है, वो भी दुकान पर नहीं बल्कि बाहर जो लारी लगाते हैं उसके ऊपर, वो शख्सियत बहुत बड़ी है। तो जब इंसान बड़ा होता है, और बड़ा होता है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत जितनी बड़ी होगी, जितनी गालिब होगी, उतना ही इंसान को ये गुनाह, ये छोटे मोटे गुनाह, ये बिल्कुल कंकर पत्थर लगेंगे, इंसान के लिए छोड़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह यही मोहब्बत हमें अता फरमा दे, यही मोहब्बत हमें सिखा दे। एक और मज़मून अजीब, उलमा के लिए भी है और जो लोग भी इल्म रखते हैं उनके लिए भी है। फरमाया कि मशायख की सोहबत में इजाफे इल्म के लिए न जाना चाहिए, बल्कि अपने कल्ब की कैफियत एहसानी का दर्द लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी का इल्म शेख से ज़्यादा हो, मगर कैफियत एहसानी एक मुस्तकिल चीज़ है। कल्ब की कैफियत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक, उसको लेने के लिए जाना चाहते हैं। अगर इंसान ने अपने इल्म को बड़ा समझा तो उसकी मिसाल ऐसी होगी कि वो अपने इल्म की रेल का वज़न ज़्यादा समझेगा शेख की कैफियत एहसानी के जहाज़ के वज़न से। देखो भाई, जहाज़ भी होता है, हवाई जहाज़ जिसको कहते हैं, यकीनन उसमें वज़न होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वज़न किस में होता है? रेल के इंजन में। इंजन तो पूरा लोहे का बना होता है, बहुत वज़नी होता है। तो अब कोई आदमी हो समझे कि भाई मैं बहुत वज़नी हूँ इल्म के एतबार से, तो बेशक हो, लेकिन ट्रेन जाएगी कितनी रफ्तार पर? 100-200 की रफ्तार पर। और हवाई जहाज जाता है कितनी तेज़ी के साथ? 500-700 मील की रफ्तार पर हवाई जहाज़ का सफ़र होता है। क्यों? बुनियाद ये है कि हवाई जहाज़ में स्टीम है, और वो स्टीम गालिब है ट्रेन के अंदर जो इंजन होता है उसकी स्टीम पर। ये स्टीम कम है, वो स्टीम ज़्यादा है। अल्लाह वालों के कल्ब में कैफियत एहसानी होती है, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इतना कवी कनेक्शन होता है कि उस कनेक्शन की वजह से वो मिनटों में पता नहीं हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। फरमाते हैं कि जहाज़ में जो स्टीम है उससे वो मिनटों में हज़ारों मील का सफ़र कर लेता है, रेल एक महीने भी वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो तालिब को चाहिए कि अपने को रेल समझे, ट्रेन समझे, और शेख को हवाई जहाज समझे। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हजरत, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से इल्म लेने नहीं गए थे, बल्कि यही कैफियत एहसानी लेने के लिए गए थे, वरना उनका इल्म बड़ा ज़बरदस्त था। हज़रत इमाम हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। इमाम गज़ाली जो 5वीं सदी हिजरी की बड़ी शख्सियत थी, उनके मर्तबे का इल्म उनके पास था। और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़ा इल्म था, पुराने ज़माने की जो बुज़ुर्गों के पास फ़िक़ी मसाइल का की महारत होती, अल्लाह ने वो दी थी हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं, दुनिया भर की में इल्म के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से क्या क्या खिदमात अंजाम दी। फरमाते हैं ये बातें, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उतने बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन ये सब हजरात उन पर उनके पास गए, उनसे जाकर बैत हुए, उनसे ताल्लुक़ कायम किए। किसी ने गालिबन हज़रत गंगोही से पूछा या इनमें से किसी से कि हज़रत आप इतने बड़े आलिम होकर, हाजी साहब जिनको लोग आलिम भी नहीं कहते, मौना भी नहीं कहते, हाजी साहब आप उनसे बैत हो रहे हैं, क्या बात है? तो फरमाया भाई देखो, एक तो होती मिठाई, मुख्तलिफ रंगों की मिठाई होती है, हर एक का नाम भी होता है कि इसका ये नाम, इसका ये नाम, इसका ये नाम, तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं। और एक वो होता है जिसने इन मिठाइयों का नाम जिसको मालूम नहीं है, मगर हर मिठाई को चख रखा है। तो हमारी मिसाल ऐसी है कि हमें मिठाइयों के नाम मालूम है कि ये बर्फ़ी है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला चीज़ है, मगर चखा कुछ भी नहीं। और हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह में नाम तो नहीं जानते, लेकिन सब कुछ चखा हुआ है। तो वाक़िया ये है कि अल्लाह वालों के पास जो निस्बत होती है वो बहुत ऊंची होती है। अल्लाह ताला हम सब को भी ये निस्बत, ये मोहब्बत अता फरमाए, और फिर देखे इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बड़े बड़े उलमा, अकाबिर और जो भी इंसान अल्लाह वालों की खिदमत में गया, अल्लाह की तरफ से उनको कवि निस्बत हासिल होती है। अल्लाह ताला हम सब को भी अपने करम से और मशाइख की सोहबत से मुस्तफीद होने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। चंद मिनट जिक्र अल्लाह कर लीजिए। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
السلام والسلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وابتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.